मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 3 मई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्र का नाम है अजय धाकड़ जो माधोगढ़ गांव से हैं, जिनका जिला मुरैना है और राज्य है मध्य प्रदेश। तो अजय आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग हरित क्रांति कृषोन्नति योजना पर कुछ बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम लोग कुछ थोड़ी सी दूसरी चीजों को देख लें। लेकिन दूसरी चीजों की संख्या भी आज बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स। रेडियो न्यूज में तो नहीं, लेकिन जो आपका दूरदर्शन की न्यूज थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट खबर है कंटेंट के रूप में, और वो ये कि दुनिया के जो प्रदूषित शहरों की जब लिस्ट बनाई गई तो शुरू के जो 15 सर्वाधिक प्रदूषित नगर जब उसमें से छांटे गए कि कौन है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें शुरू के चौदह के चौदह भारत के नगर हैं, भारत के शहर हैं। और कुछ समय पहले तक आप सुनते रहे होंगे कि दिल्ली सबसे प्रदूषित नगरों में माना जाता था, लेकिन अब दिल्ली को पछाड़ दिया है इस मामले में। कम से कम उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर ने, और उस कानपुर ने जो लगभग अब एक तरह से डी इंडस्ट्रियलाइज्ड होता चला जा रहा है, कानपुर शहर के बहुत से उद्योग बंद होते चले जा रहे हैं। कल्पना करके देखिए कि अगर वे उद्योग जारी रहते तो कानपुर शहर की क्या स्थिति हो गई होती। और उसमें भी दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ज्यादातर जो शहर है वो उत्तर प्रदेश के हैं। नो डाउट कि उसमें जोधपुर भी है और उसमें उत्तर आपके जयपुर भी है, दिल्ली है, श्रीनगर है, लेकिन ज्यादातर जो नगर हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। मित्रों ये एक खबर है और इस खबर को आधार बना करके दैनिक जागरण ने एक एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। और आप जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो पर्यावरण है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, और उस टॉपिक को आप इस घटना से जोड़ सकते हैं। मतलब ये उस टॉपिक का एक करेंट डेवलपमेंट है, और अगर आप मेंस के पेपर उठा करके देखेंगे तो प्रदूषण को लेकर के एकाध क्वेश्चन तो हर साल पूछ लिया जाता है, और वो बिल्कुल करेंट से होता है और बहुत ही व्यावहारिक स्तर का प्रश्न होता है। तो यहां पर आप एक दिमाग में एक प्रश्न क्रिएट कर सकते हैं, वीव कर सकते हैं, बना सकते हैं कि क्या कारण है कि भारत के शहर सबसे अधिक प्रदूषित है। एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न मैंने बनाया है। अगर इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स इकट्ठे कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि इससे इस टॉपिक से रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन्हें भी आप आसानी के साथ हल कर लेंगे। फ्रेंड्स अभी न्यूज से बस इतना ही, अब मैं मुख्य विषय पर आ रहा हूं, और मुख्य विषय के बाद मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स से कुछ जरूरी बातें आपसे करूंगा, लेकिन पहले मैं मुख्य विषय पर बात कर लेता हूं, नहीं तो अक्सर मैंने देखा है कि उसमें फिर कटौती करनी पड़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुख्य विषय के रूप में आज का टॉपिक है मित्रों, वो है हरित क्रांति कृषोन्नति योजना, राइट। ये आपके रेडियो न्यूज में भी था और ये आपके डीडी न्यूज में भी था, और डीडी न्यूज में बहुत विस्तार के साथ इसके लिए इस पर चर्चा की गई थी। न केवल विस्तार के साथ न्यूज के बारे में बताया ही गया था बल्कि इस पर डिस्कशन भी किया गया था, अगर आपने डीडी न्यूज देखा हो तो। दोस्तों इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, बल्कि यूं कह लीजिए कि मैं फोर्स करता हूं, आप लोगों को धक्का देता हूं कि प्लीज आप डीडी न्यूज को मिस मत किया कीजिए। अगर सच में आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो, और अगर वैसे ही तो फिर आप अपने ढंग से डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। डीडी न्यूज में या आपके रेडियो न्यूज में भी आपने सुना कि सरकार के जो कैबिनेट होती है, मैं बता चुका हूं कि कैबिनेट ही मूलतः सरकार होती है, कैबिनेट की कुछ कमेटियां होती हैं जो अलग अलग मुद्दों पर निर्णय लेती हैं और उसी की एक समिति होती है आर्थिक मामलों की समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। सीधी सी बात है कि आर्थिक मामलों की समिति है तो आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं उसके बारे में ये कमेटी निर्णय लेती है। और इस कमेटी ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय ये है कि जो हरित, अभी तक कृषि विकास के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही थी, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, अलग अलग तरह की योजनाएं थी तो उनकी 11 योजनाओं को के बारे में कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इनको एक में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसको कहा जाता है सिंगल अम्ब्रेला, जैसे छाता होता है ना, आप देखिए तो एक छाते में कितने वो सीके होती हैं आप देखते हैं ना, जिससे कि वो कपड़ा चिपका रहता है, उसका सिलाई हुई रहती है और फिर छाता फैला रहता है। तो इन 11 योजनाओं को एक ही छाते के नीचे ले आया जाए, यानी कि इनको इंटीग्रेटेड कर दिया जाए, इनको मिला दिया जाए ताकि कोई दोहराव न हो, आपस में टकराव न हो और ये सब मिलकर के 11 के 11 मिलकर के कृषि को एक दिशा दे सके, एक वास्तव में परिवर्तन प्रस्तुत कर सके। यहां मैं आपको फ्रेंड्स उन 11 योजनाओं के बारे में, जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो योजनाएं टिक जाएं। जरूरी नहीं कि आप 11 के 11 को जाने, लेकिन एक धारणा के रूप में आपको मालूम हो जानी चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस में ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि किन किन योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है, नॉट एट ऑल। इसको लेकर के कोई ना कोई समीक्षात्मक प्रश्न ही बनेगा, तो अगर आपकी धारणा में है, धारणा बन गई है कि अच्छा इसमें इस स्तर की योजनाएं ली गई है, तो उतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। तो मैं कुछ योजनाओं के बारे में अभी चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि जो ये योजनाएं थी, बेसिकली जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो खत्म होने वाली 18 में खत्म थी, तो उसमें ये खत्म होने वाली थी। अब कैबिनेट कमेटी ने उसे 2019-20 तक बढ़ा दिया है, 2019-20 तक उसे बढ़ा दिया है, उसको एक्सटेंड कर दिया है। और इसमें जो केंद्र का जो कंट्रीब्यूशन है, आंकड़ों के रूप में एक याद रख लीजिए, मैंने एग्जैक्ट नहीं लिखा, एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूं, 33,000 करोड़ रुपए, 33,000 करोड़ रुपीज, ये डेटा आपके दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए, 33,000 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स अब मैं आपको उन योजनाओं के कुछ नाम बता रहा हूं, राइट? आप देखेंगे कि नाम से ही आपको अनुमान हो जाएगा कि इसके तहत क्या किया जाता होगा, उतना आप अनुमान लगा लीजिएगा, है ना, और बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। देखिए पहली योजना चल रही, एग्जैक्ट मैं नाम नहीं बता रहा हूं, है ना, जो योजना का नाम है वो नहीं बता रहा हूं, केवल एक समझ पैदा करने की दृष्टि से मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूं। एक योजना थी बागवानी का एकीकृत विकास, बागवानी आप जानते हैं, बागवानी का एकीकृत विकास, राइट, केला उगाना है, संतरा उगाना है, ये बागवानी के क्षेत्र में आते हैं, खाद्यान्न अलग है, बागवानी अलग है। तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन, तिलहन आप जानते हैं कि तिलहन के जो खेती होती है उनका कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। अगला है बीज एवं पौध रोपण, है ना, मतलब बीज कैसे, उन्नत किस्म के बीज हों, कैसे पौधों का रोपण किया जाए, टेक्निकलिटी की बात है। कृषि मशीनीकरण, है ना, कि खेती का कैसे मशीनीकरण किया जाए, ज्यादा से ज्यादा खेती मशीन, खेती के लिए मशीनों का उपयोग किया जाए। पौध संरक्षण, यानी कि पौधों में बीमारी लग जाती है और संकट पैदा हो जाते हैं, आंधी तूफान गर्मी इन अकाल, इन सबसे कैसे उनको संरक्षित किया जाए, पौध संरक्षण। कृषि गणना, कृषि गणना का मतलब है कि कैलकुलेशंस, रिकॉर्ड रखना, शोध के लिए आंकड़े इकट्ठे करना, ये कृषि गणना में आते हैं, कृषि गणना। फिर है कृषि सहयोग, कृषि के क्षेत्र में कैसे सहयोग दिया जाए। अब सहयोग के लिए क्या होगा, आपको आपको वित्त की जरूरत पड़ रही है, ऋण की जरूरत पड़ रही है, आपको स्टोरेज की जरूरत है, आपको उचित मूल्य की जरूरत है कि किसानों को उचित मूल्य मिल सके, तो ये सब कृषि सहयोग के अंतर्गत हैं। फिर कृषि विपणन, यानी कि मार्केटिंग उनको उपलब्ध कराई जाए। और लास्ट है मित्रों ई गवर्नेंस के बारे में आप जानते हैं कि कैसे उनको किसानों को सही सूचना मिल सके, कैसे वो ई गवर्नेंस के माध्यम से उनको इम्पावर्ड किया जाए, ये सारी बातें इसमें है। तो ये कुछ योजनाएं थी और ये अलग अलग योजनाओं को अब एक ही अम्ब्रेला के अंतर्गत लाया गया है और पर्पज आप जानते हैं कि अभी की सरकार का ये उद्देश्य है कि 2022 तक किसी भी हालत में जो किसानों की आय है वो दुगनी कर दी जाए। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे मालूम पड़ रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए थोड़ी विस्तार से भी मैंने बातें यहां रख दी हैं। अब मैं कुछ प्रेस क्लिपिंग्स पर आता हूं। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेस क्लिपिंग्स फ्रेंड्स आज मेरे पास हैं और नो डाउट कि उसमें कुछ इंग्लिश के हैं और उसमें कुछ हिंदी के हैं। तो पहले मैं आपको हिंदी की दो न्यूज पेपर की क्लिपिंग्स के बारे में बताना चाहूंगा। एक क्लिपिंग दैनिक जागरण का है, इसमें अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है कि कैसे जो हमारे पिछड़े जिले हैं उनको आगे लाया जाए। आपको मालूम होगा कि सरकार ने अभी 28 राज्यों के 115 जिलों को चुना है और कोशिश ये है कि इनका कायाकल्प किया जाए, इनका तेजी से विस्तार किया जाए जो बहुत ही पिछड़े जिले हैं। आंकड़ा है 28 राज्यों के 115 जिले, राइट। तो उन इस योजना के तहत सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, इसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें चर्चा की है। और चूंकि सीईओ खुद अमिताभ कांत जी का लिखा हुआ है तो इसीलिए इसमें जो तथ्य दिए गए ये मान करके चलिए कि वो सरकारी तथ्य हैं। जहां तक आंकड़े और तथ्यों की बात है तो बट नेचुरल है कि वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। हाँ, आप जहां तक विश्लेषण पर जब आप आते हैं तो फिर वो आप अपने ढंग से विश्लेषण कर सकते हैं और वही तो आपकी इंटेलिजेंस को शो करेगी। इसके बाद एक जो दूसरा आर्टिकल मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मित्रों, राष्ट्रीय सहारा का है 2 तारीख का। इसमें पुष्पेश पंत जी ने उत्तर कोरिया की बैकग्राउंड पर लिखा है। अभी आप देख रहे हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया थोड़ी सी दोस्ती हो रही है, उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच में कितना जबरदस्त तनाव हो गया था, लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध हो ही जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग बीच बीच में करते भी रहे हैं। और अब मई में उत्तर कोरिया और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच बातचीत होनी है जिसके लिए पूरी दुनिया बहुत ज्यादा उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। तो मित्रों इस आर्टिकल की खासियत यह है कि आपको उत्तर कोरिया की बैकग्राउंड पता लगेगी और जब तक हम किसी देश की बैकग्राउंड को नहीं जानते हैं तब तक सच पूछिए तो उसकी जो वर्तमान स्थितियां हैं, जो संकट हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें हम समझ नहीं पाते, हम तो एक तरफा निर्णय लेते हैं। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, बहुत ही प्यारे ढंग से समझाया है, बहुत ही बेसिक तरीके से, और मुझे लगता है कि एक बार यदि आप ध्यान से इसे पढ़ लेंगे तो ये समस्या आपके समझ में आ जाएगी और फिर जब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जब बातचीत होगी तो उस समय की चीजें तो आप बहुत बहुत सरलता से समझ लेंगे। तो ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये दोनों आर्टिकल चूंकि हिंदी में है तो आपको पढ़ने ही चाहिए। मैं 2 आर्टिकल आपको और प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इंग्लिश के हैं और दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के। एक जो आर्टिकल है वो अतुल राजा जी का लिखा हुआ है कि जो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन के कारण इम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है, इम्प्लॉयमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, रोजगारी बेरोजगारी आप जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन ने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा किया। यहां जो ऑटोमेशन की हम बात करें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है। फ्रेंड्स ये इंग्लिश में है, मैं जो स्टूडेंट इंग्लिश नहीं जानते हैं उनके लिमिटेशन को मैं समझ सकता हूं, उनको दिक्कत होगी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इसका भी आपको हिंदी वर्जन उपलब्ध कराऊं। और साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एक और आर्टिकल है जिसको उन्होंने बड़े नए तरीके से लिखा है और इसको लिखा है गौरव डालमिया ने, ये एक तरह से बड़ा विचित्र तो नहीं कह रहे, बड़ा वैचारिक किस्म का लेख है और एक ऐसा लेख है जिसे मैं आलू की सब्जी कहना चाहूंगा। आलू इस मायने में कि इसका इस्तेमाल आप कई जगह कर सकते हैं, जैसे आलू होता है ना, आलू आप बैगन बना लीजिए, आलू मेथी बना लीजिए, आलू पालक बना लीजिए, कहीं भी इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसमें जो चीजें आपको मिलेंगी वो इस तरह की बहुविध चीजें हैं कि इनका इस्तेमाल आप कहीं कई कई जगह कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा प्यारा लेख मिला लगाइए, तो ये भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और मेरी कोशिश होगी कि इसका भी इंग्लिश वर्जन का हिंदी वर्जन मैं आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। तो मित्रों और 2-3 लेख और हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, प्रांजल बणिक जो असम से हैं, पलक मल्होत्रा सहारनपुर से हैं, राकेश कुमार माधेपुरा बिहार से हैं और शुभम मिश्रा मध्य प्रदेश से हैं। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।